بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا گن، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، سدیو کی بھانتی کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں سے کر رہے ہیں۔ آج آپ سورہ دہر کی تیسری سے لے کر گیارہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں محمد صدیق منشاوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا،
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہم نے منوشے کو مارگ دکھا دیا ہے، اب چاہے وہ کرتگ رہے یا اکرتگ۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نشچے ہی پھلے لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی بھلی مہک کا مشرن ہوگا۔ وہ ایک سروت ہوگا جسے اللہ کے وشیش بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ ایشور کے یہ بندے منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا دنڈ ویاپک ہوگا، اور وہ کھانے کی چاہت و آوشکتا رکھنے کے باوجود اسے محتاج، اناتھ اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تو کیول اللہ کی پرسنتا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، انیتھا نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ آبھار۔ ہمیں تو اپنے پالنہار کی اور سے ایک ایسے دن کا بھے ہے جو اتینت کرور اور لمبا ہوگا۔ تو ایشور نے انہیں اس دن کی کڑائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی و پرسنتا پردان کی۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شوتاؤ، میں ہوں احمد عباس، میرا سلام سویکار کیجیے۔ ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@wbs.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ ہے parstoday.com/hi اور واٹس ایپ پر ہمارا سمپرک نمبر ہے 0098-9035065492۔ شوتا، آج بدھوار ہے، خرداد کی 4، شوال کی 25 اور مئی کی 25 تاریخ۔ اس سمے کی سبھا میں آپ سب سے پہلے سماچار سنیں گے، جس کے بعد انمول باتیں کارکرم پرستت کیا جائے گا، پھر آپ راجنیتک چرچا کا کارکرم سنیں گے، اور پھر شورے گاتھا سبھا کا انتم کارکرم ہوگا آج کل۔ یہ ہے کارکرموں کی روپ ریکھا۔ اب سے کچھ دیر بعد آپ سنیں گے انتراشٹریہ سماچار۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ لیجیے شدہ سنیے انتراشٹریہ سماچار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ اسلامک کرانتی کے نیتا نے کہا ہے کہ بڑی طاقتوں کی دشمنی کے باوجود ایران سفلتا کی راہ پر آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارت میں الگاوادی نیتا یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پاکستان میں پورو پردھان منتری عمران خان کا مارچ شروع ہو گیا ہے۔ اویدھ ادھکرت فلسطین میں حالات یتھاوت تناؤپورن ہیں۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔ اسلامی کرانتی کے نیتا آیت اللہ العظمی خامنی نے دیش کے سانسدوں سے ملاقات میں زور دے کر کہا کہ انقلابی بننے سے زیادہ اہم انقلابی باقی رہنا ہے۔ بدھوار کو امام خمینی امام بارگاہ میں 11ویں سنسد کے سدسیوں سے ملاقات میں سپریم لیڈر نے 8 ورشیہ پوتر پرتیرکشا کے دوران خرم شہر کی آزادی کی گھٹنا کا الیکھ کرتے ہوئے خرم شہر کی آزادی کو ایک کڑوے سمیکرن کے مدھر سمیکرن میں بدل جانے کی گھٹنا بتایا۔ اسلامی کرانتی کے نیتا نے سمیکرن کے اس بنیادی بدلاؤ کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ کٹھن، جٹل اور کٹو پرستھتیوں سے گزر کر فتح اور سفلتا تک پہنچنے کا اصول جہادی کریا کلاپ، پختہ ارادہ، نت نئی شیلی پر کام، تیاگ، دیر کالنگ نظر اور سب سے بڑھ کر نشٹھا اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ آیت اللہ العظمی خامنہ ای نے سنسد کو دیش کی پربندھن ویوستھا کے مکھ استمبھوں میں سے ایک بتایا اور بل دے کر کہا کہ کشمتاؤں اور خامیوں کی صحیح پہچان بڑی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن اپنی طاقت سے زیادہ ہماری غلطیوں سے امید لگائے ہوئے ہے۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا نے ایران کے وشال کھیترفل، بڑی آبادی، پرانے اتہاس اور وویدھ جلوایو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران جیسی پوزیشن رکھنے والے دیش کا سنچالن بہت مہتوپورن ہے اور دنیا کے ورتمان حالات کے مد نظر سوابھاوک روپ سے کٹھن اور پیچیدہ ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ البتہ دنیا کے ورتمان حالات میں سارے دیشوں کے لیے کٹھن حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا نے دنیا کے وشیش ورتمان حالات کی وجہوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بڑی طاقتوں کے بیچ دشمنی بھرا مقابلہ، پرمانو طاقتوں کے ایک دوسرے کو دھمکیاں، لگاتار بڑھتی سامرک گتویدھیاں، خطرے اور یورپ کے قریب جنگ جو دنیا کے گمبھیر جنگی علاقوں میں گنا جاتا ہے، ایک بیماری کا بہت ویاپک پیمانے پر پھیل جانا اور وشو استر پر کھاد سنکٹ وے کارن ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں خاص حالات پیدا ہو گئے ہیں اور ان حالات میں ملکوں کے لیے سنچالن کا وشے کافی سخت اور پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اسلامی کرانتی کے نیتا نے کہا کہ دنیا کے ان خاص حالات کے ساتھ ہی ایران دھارمک لوک تنتر کا نمونہ پیش کرنے اور اس کے نتیجے میں ورچسوادی ویوستھا کے سارے سمیکرن بگڑ جانے کے کارن دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ الگ الگ پہلوؤں سے ستت چنوتیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ آتنکوادیوں دوارا شہید کیے گئے پوتر استھلوں کے رکشک آئی آر جی سی کے کرنل شہید سیاد خدائی کے انتم سنسکار میں جن سیلاب امڑ پڑا، جس میں جم کر اسرائیل اور امریکہ ورودھی نعرے لگے۔ پراپت رپورٹ کے مطابق منگلوار کو تہران میں ہزاروں کی سنکھیا میں نم آنکھوں سے پوتر استھلوں کے رکشک کرنل شہید سیاد خدائی کو انتم ودائی دی گئی۔ شہید خدائی زائنی تتو اور سامراج وادی شکتیوں کا سمرتھن پراپت آتنکوادیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے آئی آر جی سی کے جالے شہید خدائی کے انتم سنسکار میں شامل لوگوں نے جہاں سامراجواد کی چولیں ہلا دینے والے نعرے لگائے، وہیں شہیدوں کے پرتی اپنی وفاداری کے سنکلپ کو بھی دہرایا۔ کشمیر کے الگاوادی نیتا یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یاسین ملک کو این آئی اے کی ایک عدالت نے ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں دوشی قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ اس سے پہلے 19 مئی کو عدالت نے یاسین ملک کو ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں دوشی قرار دیا تھا، لیکن سزا سنانے کے لیے 25 مئی کا دن نردھارت کیا تھا۔ یاسین ملک کے وکیل امیش ورما نے بتایا کہ دو الگ الگ معاملوں میں عمر قید کی سزا ملی ہے۔ اس کے علاوہ 10 معاملوں میں 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ سبھی سزائیں ساتھ میں چلیں گی۔ اس کے علاوہ یاسین ملک پر 10 لاکھ کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے۔ انہیں الگ الگ دھاراؤں میں سزا سنائی گئی ہے۔ وہ آگے اپیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف سزا کو لے کر ہوگی، دوشی سدھ ہونے کو لے کر نہیں۔ یاسین ملک پر دیش کے ورودھ یدھ چھیڑنے، اپرادھک سازش رچنے اور غیر قانونی گتیویدھیوں میں شامل ہونے جیسے آروپ لگائے گئے تھے۔ یاسین ملک جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ادھیکش تھے۔ اس سنگھن نے 1989 اور اس کے کچھ ورشوں بعد تک مول روپ سے کشمیر گھاٹی میں سشستر لڑائی کا نیتریتو کیا تھا۔ یاسین ملک جموں اور کشمیر کو بھارت اور پاکستان دونوں سے آزادی دلانے کی بات کرتے ہیں۔ ملک کے سنگھن نے 1994 میں بندوق چھوڑ دی اور کشمیر کی آزادی کے لیے ایک شانتی پورن سنگھرش کی گھوشنا کی۔ بھارت سرکار نے چینی کے نیرات پر 1 جون سے پابندی لگا دی ہے، جس کا ادیش گھریلو بازار میں اس کی اپلبدھتا بڑھانا اور مولیہ وردھی کو روکنا ہے۔ ودیش ویاپار مہا ندیشالے نے ایک ادھیسوچنا میں کہا کہ چینی کا نریات 1 جون 2022 سے پرتبندھت شرینی میں رکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ پابندی سی ایکس ایل اور ٹی آر کیو کے تحت یورپی سنگھ اور امریکہ کو نریات کی جا رہی چینی پر لاگو نہیں ہوگی۔ سی ایکس ایل اور ٹی آر کیو کے تحت ان کھیتروں میں ایک نشچت ماترا میں چینی کا نریات کیا جاتا ہے۔ ایک بیان میں سرکار نے کہا کہ چینی موسم 2021-22 کے دوران دیش میں چینی کی گھریلو اپلبدھتا اور مولیہ استھرتا بنائے رکھنے کے لیے اس نے 1 جون سے چینی نریات کو ونیمت کرنے کا نرڑے لیا ہے۔ پاکستان میں پورو پردھان منتری عمران خان نے حقیقی آزادی نام کا مارچ شروع کر دیا ہے۔ بہت بڑے جین سیلاب اور کئی کلومیٹر لمبے گاڑیوں کے کارواں کے ساتھ عمران خان اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا پرانت سے پنجاب اور پھر وہاں سے گزر کر اسلام آباد پہنچنے کا عمران خان کا کارکرم ہے۔ اپنے سمرتھکوں کی بھاری سنکھیا کو عمران خان نے سمبودھت کیا اور انہیں اسلام آباد کی طرف آگے بڑھنے اور راستے میں پرشاسن کی اور سے لگائی گئی رکاوٹیں ہٹا دینے کے لیے پروتساہت کیا۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو سندیش میں عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارا ایک ہی لکشیہ ہے، جب تک وہ چناؤ کی تاریخ کی گھوشنا نہیں کر دیتے اور سرکار ختم نہیں ہو جاتی، ہمارا آندولن جاری رہے گا۔ عمران خان نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں سے خاص طور سے اپیل کی ہے کہ وہ باہر نکلیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اس مارچ میں شامل ہونے والے لوگ چناؤ کی تاریخ کی گھوشنا ہونے تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ فلسطینی پرتیرودھک بلوں نے منگلوار رات ایک بیان جاری کر کے اویدھ زائونی شاسن کو چیتاونی دی ہے کہ اویدھ زائونی کالونی واسیوں دوارا ہر دن مسجد الاقصی کا کیا جانے والا انادر وہ کسی بھی استھتی میں سہن نہیں کریں گے۔ سماچار ایجنسی ایرنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی پرتیرودھک بلوں نے اپنے بیان میں اسرائیل کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تل ابیب یہ اچھی طرح جان لے کہ قدس کی تلوار ابھی میان میں نہیں گئی ہے۔ بتا دیں کہ رویوار کو اویدھ زائونی شاسن کی ایک عدالت نے اپنے ایک آدیش میں اویدھ زائونی کالونی واسیوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ مسجد الاقصی کے پرانگڑ میں اپنے دھارمک سنسکاروں کو پوری آزادی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔
فلسطینی سوتروں نے پوروی نابلس آتنکی اسرائیلی سینکوں کے ہاتھوں ایک فلسطینی یوک کے شہید ہونے کی سوچنا دی ہے. وہیں دوسری اور اویدھ زائونی کالونی واسیوں نے آتنکی اسرائیلی سینک کے سمرتھن سے ایشوری دوت حضرت یوسف پیغمبر کے مقبرے پر حملہ کیا. فلسطینی سماچار ایجنسی معاہ کی رپورٹ کے مطابق ویسٹ بینک کے اتر میں استھت پوروی نابلس میں آتنکی اسرائیلی سینکوں نے 16 فلسطینی یوک غیس رفیق یامین کو بڑی بے رحمی کے ساتھ گولی مار کر شہید کر دیا ہے. اویدھ زائونی شاسن کے قبضے والی حیفہ بندرگاہ پر ایک ایندھن بھنڈار میں بھیشن آگ لگ گئی. ستھانیہ میڈیا نے بتایا کہ سونول آئل پرتشٹھان کے ایک بھنڈار میں پھر آگ لگ گئی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ آگ لگتے ہی چاروں طرف ہڑکم مچ گیا اور بڑی مشکل سے دمکل وبھاگ نے اس پر قابو پایا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حیفہ میں اس طرح کی گھٹنائیں لگ بھگ روز ہو رہی ہیں, جسے دیکھتے ہوئے یہاں رہنے والے زائنیوں کو لگتا ہے کہ ایندھن کے بھنڈار اس بندرگاہ سے دور کر دیے جانے چاہیے. اس سے پہلے حیفہ کے کریات حائم علاقے میں بھی آگ لگ گئی تھی. یمن کے سشست بلوں نے پچھلے ایک سپتاہ کے دوران سعودی گٹھ بندھن کے تیسرے آدھونک جاسوسی ڈرون ویمان کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا. الارم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی سینا کے پروکتا یحیٰ سری نے بتایا کہ جس ڈرون ویمان کو یمنی جیالوں نے آسمان میں ہی دھوست کیا ہے وہ سعودی عرب کی وایو سینا کا ہے. یمنی سینا کے پروکتا نے بتایا کہ یمن سعودی عرب سیما پر استھت نجران علاقے میں سعودی عرب کی وایو سینا کا آدھونک ڈرون ویمان یمنی جیالوں کی جاسوسی کر رہا تھا, تبھی یمنی سینا نے زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل سے سعودی عرب کے آدھونک ڈرون ویمان کو آسمان میں ہی تباہ کر دیا. امریکہ کے پورو ودیش منتری ہینری کیسنجر کا بیان بہت چرچا میں ہے, جس میں انہوں نے پشچم کو چیتاونی دی ہے کہ وہ یوکرین جنگ میں روس کی سیناؤں کو شکست دینے کی یوجنا دماغ سے نکال دے, کیونکہ آگے چل کر یورپ کی سرکشا پر اس کا بے حد خطرناک اثر پڑے گا. برطانیہ اخبار ٹیلی گراف میں چھپنے والی رپورٹ کے انوسار کیسنجر نے داووس میں بھاشن دیتے ہوئے کہا کہ سامنے موجود لمحوں کے بہاؤ میں آ کر روس کی پوزیشن کو بھلا دینا بہت خطرناک ثابت ہوگا. کیسنجر نے کہا کہ روس 400 تک یورپ کا بنیادی حصہ رہا ہے اور سنکٹ کے سمے اس نے ہمیشہ شکتی کا سنتولن قائم رکھا ہے. یہ پرانا رشتہ یورپی نیتاؤں کے دماغ سے نہیں نکلنا چاہیے. اس سجھاؤ پر پرتکریا دیتے ہوئے یوکرین کے راشٹرپتی زیلنسکی نے کہا کہ روس جب تک 24 کے بعد قبضے میں لیے گئے سارے علاقے لوٹا نہیں دیتا اس سے کوئی بات نہیں ہوگی. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے.
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز.
انمول باتیں.
شروتاؤ, کارکرم انمول باتیں لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں. کارکرم میں ہم ایران کی اسلامی کرانت کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ صدری خامنائی دوارا اپنی کلاس میں بیان کی گئی پاٹھ دائک باتوں اور حدیث کے سمبندھ میں ان کے وشلیشن پر ایک نظر ڈالیں گے. پیغمبر اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے اسی کے اگلے بھاگ میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ کبھی بھی اجانیوں کے بیچ میں ترک پورن اور ویویک پورن بات نہ کرو, کیونکہ یہ اس ویویک پورن بات کے ساتھ انیا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی یہ بھی ہوتا ہے کوئی ویکتی گیان پراپت کرنے کے لیے لالائت ہے, کچھ سمجھنا چاہتا ہے, آپ اس سے ایک بات کہتے ہیں, کوئی سمجھداری بھری بات یا اپدیش پر آدھارت بات اس سے کہتے ہیں. یہ اس ویکتی کی بھی سیوا ہے اور اس ترک پورن بات کی بھی سیوا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایسے اجانی لوگ ہوتے ہیں جو الگ ہی پرکار کے ہیں, ارتھات یہ کہ وہ ویویک پورن باتوں کو سمجھنے میں سکشم نہیں ہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے. آپ ان سے کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں, اپ شبد کہنے لگتے ہیں, کبھی یہ بھی ہوتا ہے، انسان کوئی مہتوپورن بات اور ویویکپورن بات ایسے لوگوں کے بیچ کہہ دیتا ہے جو اس بات کو سننے کی یوگی نہیں ہے۔ یدی بار بار وہی بات اس پرکار کے لوگوں کے بیچ کہی جائے تو اس بات کا مہتو بھی ختم ہو جائے گا اور سننے والے اس بات کو مانیں گے بھی نہیں۔ سجھاؤ دیا گیا ہے کہ یہ کام آپ کبھی نہ کریں۔ جب سمجھدار لوگ بیٹھے ہوں تو ان کے بیچ میں سمجھداری کی باتیں اور ویویک پورن باتیں کرنے کا اوسر ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یدی کسی نے ایسا کیا تو یہ سمجھدار لوگوں پر اتیاچار ہے۔ یدی آپ نے وہاں ویویک پورن باتیں نہیں کی تو مانو آپ نے ان پر اتیاچار کیا ہے۔ یوگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو سننے اور سمجھنے کی بھی کھمتا رکھتے ہیں اور سیکھنے کے بھی اچھک ہیں، اگر وہ سیکھ نہیں رہے تب بھی آپ کے کہتے ہی پورے دھیان سے بات سننے لگتے ہیں۔ اس استھتی میں ویویک پورن بات دور تک پھیلتی ہے۔ یہاں پر اگر آپ نے سمجھداری کی بات نہیں کی تو مانو آپ نے اتیاچار کیا ہے۔ کبھی بھی اتیاچاری کے اتیاچار میں ہاتھ نہ بٹائیے۔ یدی آپ نے یہ کام کیا تو اپنی مہانتا سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پیغمبر اسلام کے پریجنوں سے جو شکشائیں ملی ہیں ان میں ایک مہتوپورن شکشا یہی ہے۔ ایک بندو یہ ہے کہ جو مارگ درشک بات ہو وہ تو ستیہ اور صحیح بات ہوتی ہے، اس راستے پر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب کہیں یہ استھتی ہو کہ پوری طرح اسپشٹ نہ ہو کہ وہ صحیح ہے یا غلط، تو وہاں پر کبھی بھی نشچے کے ساتھ کوئی رائے نہ دیجیے، ایشور پر چھوڑ دیجیے۔ جب وہ اوسر آئے گا کہ کوئی اس بات پر عمل کرے اور اسے پریوگ کرے تو ایشور اس کی مدد کرے گا۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستو، راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم کے ساتھ حاضر ہیں قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ عمان اور ایران کے سمبندھ، امریکہ میں پروان چڑھتا گن کلچر اور کپل سبل کا کانگریس سے منہ بھنگ، یہ وہ وشے ہیں جن کو آج کی چرچا میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ دوستوں، دوسرے دیشوں کے دباؤ کے باوجود عمان نے ایران کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو ابھی تک پربھاوت نہیں ہونے دیا ہے۔ اس بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں محمد مہدی۔
عرب دیشوں میں عمان وہ دیش ہے جو صلح کرانے، مدھیست کی بھومکا نبھانے اور نشپکش رہنے میں مشہور ہے۔ عمان کا چھیتر پھل 300,000 وگ کلومیٹر سے ادھک ہے اور وہاں کی جن سنکھیا لگ بھگ 50,00,000 ہے۔ بھوگولک درشٹی سے چھیتر کے تین مہتوپورن دیشوں سعودی عرب، سنیکت عرب امارات اور یمن کے ساتھ اس کی سیمائیں ملتی ہیں۔ عمان کے نیتی سنکٹوں کے سمادھان تناؤ کو کم کرنے اور مدھیست کی بھومکا نبھانے کی رہی ہے۔ یمن کے سمبندھ میں اس نے جو نیتی اپنا رکھی ہے اسے اسی پرپیکش میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عمان ایک مہتوپورن عرب دیش ہے جس نے 7 ورشوں کے دوران کئی بار یدھ رت یمن گٹوں کی میزبانی کی ہے۔ इस समय यमन और सऊदी अरब के मध्य जो दो महीने का युद्ध विराम चल रहा है उसमें भी ओमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ एक बिंदु का उल्लेख जरूरी है और वो ये है कि ओमान पूरी कोशिश करता है कि उसकी विदेश नीति एक स्वतंत्र देश की रहे और उसकी विदेश नीति किसी भी देश की नीति से प्रभावित न हो। इसी आधार पर वर्ष 2017 में जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर से संबंध विच्छेद कर लिया था तब भी ओमान ने कतर से संबंध नहीं तोड़ा, जबकि उस पर कतर से संबंध तोड़ने के लिए भारी दबाव था। ओमान के इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं और उसने तेहरान के साथ अपने संबंधों को दूसरे देशों के दबावों व नीतियों से प्रभावित नहीं होने दिया है। सऊदी अरब जैसे देशों के विपरीत ओमान ईरान को अरब देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले देश के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो ईरान को क्षेत्र में शांति व सुरक्षा स्थापित करने वाले देश के रूप में देखता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात जैसे कुछ देश ईरान को दूसरे अरब देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले देश के रूप में देखते हैं और इसी निराधार चीज को आधार बनाकर सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात और बहरीन ने वर्ष 2016 में ईरान से कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए, परंतु ओमान ने इन देशों की नीतियों का अनुपालन व अनुसरण नहीं किया। रोचक बात यह है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात ऐसी स्थिति में ईरान पर अरब देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगा रहे हैं, जब खुद दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में न केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं बल्कि वहां अपनी कठपुतली सरकार स्थापित करना चाहते हैं। 26 मार्च वर्ष 2015 से सऊदी अरब ने सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना यमन पर अपना पाश्विक हमला आरंभ कर रखा है। उसके इन पाश्विक हमलों में दसियों हजार यमनी मारे जा चुके हैं। मारे जाने वालों में ध्यान योग्य संख्या बच्चों और महिलाओं की है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात यमन में जो कुछ कर रहे हैं वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं तो क्या है। बहरहाल ओमान के ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और ये संबंध न केवल दोनों देशों बल्कि क्षेत्रीय देशों के भी हित में हैं।
अमेरिका में आए दिन निर्दोष लोग गोलियों का निशाना बनते रहते हैं। लंबे समय से जारी इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। एक रिपोर्ट लेकर उपस्थित हैं रविश जैदी।
टेक्सास में स्कूली बच्चों पर अंधाधुन गोलियां बरसाने वाला 18 वर्षीय हमलावर युवक सल्वाडोर रामोस ने अपने 18वें जन्मदिवस के मौके पर दो बंदूकों को कानूनी तौर पर खरीदा था। उसने पहली गोली अपने घर में ही अपनी दादी को मारी और उसके बाद वो रॉब एलिमेंट्री स्कूल जाता है, जहां 5 से 10 साल के स्कूली बच्चे अपने सेमिस्टर के अंतिम दिन एकत्रित हुए थे। रामोस वहां अंधाधुन गोलियां बरसाने लगता है। जब गोलियां चलना बंद होती हैं, तब इस साल की अमेरिका की सबसे भयावह तस्वीर सामने आती है। घटना स्थल से धुआं तो छट जाता है, पर 24 मई 2022 मंगलवार का दिन अमेरिका के इतिहास में एक काला धब्बा लगा गया। इस गोलीबारी में अब तक 18 मासूम छात्रों समेत 21 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। घायलों को एम्बुलेंस और स्कूल की बसों के जरिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। कई घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। टेक्सास के गवर्नर का कहना है कि हमलावर युवक सल्वाडोर रामोस भी पुलिसकर्मियों द्वारा उसे काबू में करने के लिए चलाई गई गोलियों से मारा गया है। व्हाइट हाउस से कांग्रेस तक प्रतिक्रियाओं का आना जारी है।
What are we doing?
अभी तक इस दर्दनाक घटना से संबंधित फुटेज को जारी नहीं किया गया है।
Beautiful, innocent, second, third, fourth graders.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि आज कुछ अभिभावक ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। माता पिता जो कभी पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। अपने बच्चे को खोना अपनी आत्मा के एक हिस्से को खोने जैसा है। मैं पूरे राष्ट्र से अपील करता हूं कि वो उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए इस अंधेरे वक्त में मजबूती देने की प्रार्थना करें। बहरहाल जिस तरह की घटना हुई है उसने एक बार फिर अमरीकी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पैसे के लिए हथियारों की बिक्री इंसानों के खून को पानी की तरह बहा रही है। वहीं घटना की तस्वीरों को प्रकाशित न करने के पीछे आम लोगों को मनोवैज्ञानिक चोट से सुरक्षित रखना बताया जा रहा है। सवाल यही है कि अगर तस्वीरों की जगह हथियारों की बिक्री पर पाबंदी लगी होती तो आज न ये दर्दनाक घटना होती और न ही इतनी बड़ी संख्या में माओं की गोद सूनी होती। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए कामरान नजफजादे की रिपोर्ट।
और श्रोताओं अब रुख करते हैं हम भारत का। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के माध्यम से राज्यसभा जाने का मन बना लिया है। नई दिल्ली से शमशाद काजमी की रिपोर्ट।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी है और आज उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से नामांकन दाखिल किया, जिन्हें समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। कपिल सिब्बल ने नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा,
16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। एज एन इंडिपेंडेंट आई विल बी गोइंग टू द राज्यसभा आफ्टर स्क्रूटनी एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू अखिलेश जी। आई ऑल्सो विश टू कन्वे माई ग्रेटिट्यूड टू आजम खान फॉर द सपोर्ट दैट ही हैज गिवन मी, not just now but over several years. I am happy that I will be a member of the Rajya Sabha once the nomination form is cleared and the scrutiny is done as an independent member. I have always wanted to be an independent voice in this country.
कपिल सिब्बल कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और वे ग्रुप 23 में शामिल थे जिसने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद जिसमें कांग्रेस को करारी हार का मुंह देखना पड़ा था, कपिल सिब्बल ने एक साक्षात्कार में गांधी परिवार पर निशाना साधा था। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे फैसलों पर भी सवाल उठाया था और पूछा था कि वे किस हैसियत से फैसले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक निर्दलीय की आवाज का अधिक प्रभाव रहेगा और हम विपक्ष में रहकर गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि हम मोदी सरकार का विरोध कर सकें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ऐसा माहौल बने कि वर्तमान सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर सपा के जीतने की संभावना प्रबल है। अभी 2 अन्य प्रत्याशियों के नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सपा नेता आजम खां की जमानत के लिए पैरवी की थी। कपिल सिब्बल ऐसे 5वें बड़े नेता हैं जिन्होंने RPN सिंह, अश्वनी कुमार, हार्दिक पटेल और सुनील जाखड़ के बाद इस साल कांग्रेस को अलविदा कहा है। उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा को 7 और सपा को 3 सीटें मिलना तय हैं। 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने राजनैतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में हमें अवश्य बताइएगा। आज बुधवार है, जिस दिन हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाते हैं आजकल, किंतु उससे पहले पेश है एक अन्य साप्ताहिक कार्यक्रम शौर्य गाथा।
शौर्य गाथा।
दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा की कन्नी कड़ी के साथ उपस्थित हैं स्वाति और कायम रिज़वी का सलाम स्वीकार करें। इस कार्यक्रम में हम सद्दाम द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको ईरान पर थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के बारे में विभिन्न आयामों से बताते आ रहे हैं। किसी भी युद्ध में विजय की निशानियों में से एक निशानी आक्रमण करने वाले के इरादे और उसके लक्ष्यों को समझना है। अल जजीरा समझौते को फाड़कर सीमावर्ती विवाद को मुद्दा बनाकर युद्ध करने से सद्दाम का मुख्य लक्ष्य ईरान की नवगठित इस्लामी सरकार को गिराना या फिर कम से कम ईरान के टुकड़े करना था।
ईरान पर हमला करने से पहले इराक के तानाशाह सद्दाम ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम ईरान के विभाजन से बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। सद्दाम ने आगे कहा कि अगर ईरान हमारे साथ दुश्मनी रखता है तो हर इराकी ही नहीं बल्कि हर अरब नागरिक ईरान के टुकड़े टुकड़े होने की इच्छा करेगा। इसी संदर्भ में इराक के तत्कालीन विदेश मंत्री तारिक अजीज ने कहा था कि एक बड़े और एकल ईरान से बेहतर कई छोटे छोटे ईरान होंगे। उन्होंने कहा कि हम ईरान के भीतर विभिन्न जातियों के विरोध और विद्रोह का समर्थन करते हैं। हमारा पूरा प्रयास ईरान के टुकड़े टुकड़े करना है।
एक पश्चिमी टीकाकार एंथनी एच कॉट्समैन का कहना है कि ऐसा लगता है कि नई क्रांति के स्वामी एक देश पर हमले के प्रभाव की इराक ने सही समीक्षा नहीं की थी। सद्दाम ने न जाने क्यों ये सोच लिया था कि ईरान पर उसका हमला इस देश के टुकड़े होने का कारण बनेगा। इराक के कई नेताओं ने अपने साक्षात्कार में इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि ईरान पर उनके हमले का परिणाम आयतुल्ला खुमैनी के खुले समर्थन के रूप में सामने आएगा।
ईरान पर हमले के बारे में इराकी इंटेलिजेंस के तत्कालीन प्रभारी वफीक अल सामिराई कहते हैं कि 22 सितंबर 1980 को 12 बजे इराकी वायुसेना के 192 युद्धक विमानों ने ईरान के भीतर अपने लक्ष्यों पर हमले किए। जिस समय इराकी वायुसेना के युद्धक विमान ईरान के भीतर अपने लक्ष्यों को भेदने में लगे हुए थे, उसी समय सद्दाम ऑपरेशन कक्ष में प्रविष्ट हुए। उसी समय इराक के तत्कालीन रक्षा मंत्री अदनान खैरुल्ला ने सद्दाम से कहा था कि श्रीमान, हमारे जवानों ने 20 मिनट पहले हमला आरंभ कर दिया है। इसके जवाब में सद्दाम ने कहा था कि आधे घंटे के अंदर ईरान की कमर टूट जाएगी।
हालांकि सद्दाम के दावे के विपरीत ईरान की कमर तो नहीं टूटी, बल्कि देश की जनता के कड़े प्रतिरोध ने ईरान को बहुत मजबूत कर दिया और वो मजबूत होकर उभरा। स्वर्गीय इमाम खुमैनी के नेतृत्व में ईरानी युवाओं ने सद्दाम की नाक इस तरह से रगड़ दी थी कि वो युद्ध के अंतिम समय तक हमेशा इस युद्ध से पीछा छुड़ाने की कोशिशों में लगा रहा। हालांकि सद्दाम को उस समय की दोनों महाशक्तियों का खुला समर्थन हासिल था। युद्ध के दौरान उसको हथियारों की कमी नहीं होने दी गई। हालांकि इसके अतिरिक्त मिस्र, सूडान और जॉर्डन से सैनिक भी इराक भेजे जाते थे।
व्हाइट हाउस के अधिकारियों के हवाले से एलन फ्राइडमैन कहते हैं कि युद्ध के मैदान में हमारे सैनिक इराकी सैनिकों की टैक्टिक सहायता किया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि कभी कभी वे इराकी सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के विरुद्ध उसकी सीमा तक जाते थे। यह स्थिति सन 1987 तक जारी रही। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ हॉवर्ड टीचर का कहना है कि अमेरिका ने सद्दाम के साथ वह काम किया जो उसने उस समय तक अपने किसी भी निकटवर्ती घटक के लिए नहीं किया था।
अपनी किताब में टाइमर मैन लिखते हैं कि सद्दाम ने जून सन 1982 को बेल्जियम की एक कंपनी सिकिस्को के साथ $830 मिलियन का एक समझौता किया था। इस समझौते के अंतर्गत भूमि के 50 मीटर के भीतर इराक के अत्याधुनिक जहाजों के लिए 800 पनाहगाहें बनानी थीं। बेल्जियम की इस कंपनी ने 4 वर्षों के दौरान इराक में 17 विमान छावनियां बनाईं। इसके अतिरिक्त उसने कुछ सैन्य केंद्रों का भी निर्माण किया था। ईरान के विरुद्ध युद्ध में फ्रांसीसी युद्ध विमान मिराज इन्हीं पनाहगाहों से हमले के लिए निकलते थे।
बेल्जियम के कंसर्शम ने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके अकाशात और अल कायम नामक 2 परियोजनाओं पर काम करके यहाँ पर विश्व में फॉस्फेट के सबसे बड़े कारखाने बनाए थे। अमेरिका के एक लेखक और शोधकर्ता टाइमरमैन ने अपनी किताब में लिखा है कि अमेरिका ने बगदाद के लिए अपने राजदूत को नियुक्त करने से पहले बगदाद में अपने गुप्तचर केंद्र में एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका काम 24 घंटे उसका निरीक्षण करना था। सद्दाम के निकट इस अधिकारी का बहुत महत्व था। किसी भी बड़े हमले से पहले इस अमेरिकी अधिकारी से विचार विमर्श किया जाता था।
एक अन्य लेखक एलन फ्रेडमैन लिखते हैं कि इराक के लिए लगभग रोजाना हथियार भेजे जाते थे। फ्रांस में नेटो की एक छावनी से इराक के लिए हथियार रवाना किए जाते थे। इन हथियारों और सैन्य साजो सामान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ्रांस के गुप्तचर विभाग ने 1986 में अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया था कि अगर फ्रांस इराक के लिए अपनी सैन्य सहायता को केवल 3 सप्ताहों के लिए रोक देता तो ये देश निश्चित रूप से युद्ध में पराजित हो जाता।
ईरान पर थोपे गए युद्ध के दौरान पश्चिम की ओर से इराक की सैन्य सहायता यहीं पर समाप्त नहीं हुई बल्कि पश्चिम ने सद्दाम को केमिकल हथियार भी उपलब्ध कराए। सद्दाम ने युद्ध के दौरान इन रासायनिक शस्त्रों का खुलकर प्रयोग किया। 1980 से 1988 के बीच सद्दाम द्वारा रासायनिक शस्त्रों के प्रयोग से 1 लाख से अधिक लोग घायल तथा शहीद हुए थे जिनमें सैनिकों के अतिरिक्त ईरान के आम नागरिक भी थे। विशेष बात यह है कि केमिकल शस्त्रों से हमला कई बार किया गया जबकि मानवाधिकारों का दावा करने वालों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार था कि जब रासायनिक शस्त्रों का प्रयोग इस स्तर पर किया गया हो। यह रासायनिक हमला जनेवा के 1925 कन्वेंशन के विरुद्ध था। ईरानी सैनिकों के अतिरिक्त इन हमलों में सीमाओं पर रहने वाले बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। सरदश्त नगर पर 28 जून 1987 को रासायनिक हमला किया गया था। जिन रासायनिक पदार्थों से सरदश्त पर हमला किया गया था उनकी एक विशेषता ये थी कि उनका दुष्प्रभाव लंबे समय तक जारी रहता है।
आज भी 50,000 से अधिक ईरानी सद्दाम के रासायनिक हमलों के दुष्परिणामों को झेल रहे हैं जिनको विशेष उपचार की जरूरत है। सरदश्त नगर में रासायनिक हमला अपने आप में बहुत ही भयानक व विध्वंसकारी हमला था। इस हमले ने व्यापक स्तर पर तबाही मचाई थी। ईरान का कहना है कि जापान के हिरोशिमा पर किए गए हमले के बाद ईरान का सरदश्त नगर केमिकल हमलों का पहला शिकार हुआ। इसके अतिरिक्त फरवरी सन 1987 को हलबचे पर भी रासायनिक हमला किया गया। इस हमले में इराक के कुर्दिस्तान के कम से कम 5,000 लोग मारे गए जबकि 7,000 से अधिक लोग घायल हुए।
हलबचे में जिस प्रकार का रासायनिक हमला किया गया विभीषिका के हिसाब से उसकी तुलना हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों से की जा सकती है। 8 वर्षों तक लगातार प्रतिरोध करने के बाद ईरान को युद्ध में सफलता हासिल हुई। राष्ट्रसंघ ने भी ईरान पर हमले में सद्दाम को ही दोषी पाया था। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव का कहना है कि 8 वर्षों तक लगातार विश्व की दोनों महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी भी ईरान पर हमले के मामले में इराक को दोषी सिद्ध नहीं होने दिया। इस दौरान वे केवल दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम की मांग ही किया करते रहे।
जब राष्ट्रसंघ के तत्कालीन महासचिव से ये पूछा गया कि थोपे के युद्ध के दौरान ईरान ने जो काम किया क्या वह प्रतिरक्षा नहीं था, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, किसी देश पर हमले के समय जो काम किया जा सकता था वही ईरान ने भी अंजाम दिया। ईरान ने विजय हासिल की, उसने अतिक्रमण के मुकाबले में जो प्रतिरोध किया वह सम्मानीय है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। सैयद मिसम और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, जैसा कि हमने अपने इस विषय पर पेश किए गए अपने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने हर ईरानी वर्ष की तरह इस साल को भी एक नए नारे के साथ नया नाम दिया है। इस साल भी ईरानी नववर्ष यानी नवरोज के मौके पर इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने नारे के तौर पर एक महत्वपूर्ण विषय चुना। पिछले कुछ वर्षों में सर्वोच्च नेता ने नववर्ष के नारे को बुनियादी तौर पर पैदावार को किसी शर्त या खासियत के साथ केंद्र में रखा है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा खामनेई इस बारे में कहते हैं कि पैदावार को केंद्र में रखने की वजह यह है कि पैदावार देश की आर्थिक मुश्किलों के हल की कुंजी है। पैदावार दरअसल देश के लिए आर्थिक कठिनाइयों और समस्याओं से बाहर निकलने का असली रास्ता है। यही कारण है कि इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने इस साल का नारा रोजगार पैदा करने वाला नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन दिया है। हमने अपने इसी विषय के कार्यक्रम की पहले भाग में आपको बताया था कि ईरान में कृषि क्षेत्र में कितनी क्षमताएं और संभावनाएं पाई जाती हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम सीमेंट उद्योग में ईरान की उत्पाद क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे।
उत्पादन के लिए उच्च क्षमता वाले आर्थिक क्षेत्रों में से एक ईरान का औद्योगिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई विशेषताएं हैं जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। वर्ष 2018 में तत्कालीन ईरान के उद्योग, खनन एवं व्यापार मंत्री रजा रहमानी कहते हैं कि 40 साल पहले इस्लामी क्रांति के सफलता के समय पूरे देश में 1503 औद्योगिक इकाइयां थीं, जिसमें आज की तारीख में 57% की वृद्धि हुई है और ये संख्या इस समय पूरे ईरान में 85,076 औद्योगिक इकाइयों तक पहुँच गई है। ईरान के उद्योग, खनन एवं व्यापार के क्षेत्र में ये सभी औद्योगिक इकाइयां पूरी सक्रिय हैं। इसी तरह खनिज इकाइयों के क्षेत्र में आज हमारे पास पहले की 195 इकाइयों के मुकाबले में 6,386 सक्रिय इकाइयां हैं, जिनमें 32 गुना वृद्धि हुई है। वहीं औद्योगिक नगरों की संख्या इस्लामी क्रांति की शुरुआत में 3 नगरों पर आधारित थी, लेकिन इन 40 वर्षों में उनकी संख्या बढ़कर 978 औद्योगिक नगरों तक पहुंच गई है, जिनमें से 858 औद्योगिक नगर पूरी तरह सक्रिय हैं और बाकी बचे अन्य ट्रेड शहरों की जमीनों के लिए मंजूरी दे दी गई है और संचालन में डाल दिया गया है। यह दर्शाता है कि ईरान की इस्लामी व्यवस्था वाली सरकार औद्योगिक नगरों के निर्माण को लेकर कितनी गंभीर है और लगातार देश के आर्थिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है।
ईरान के पूर्व उद्योग, खनन एवं व्यापार मंत्री रजा रहमानी बताते हैं कि इस्लामी क्रांति की शुरुआत में खनन क्षमता 19.6 मिलियन टन थी, जो पिछले 40 वर्षों में बढ़कर 735 मिलियन टन हो गई है। ये प्रगति दर्शाती है कि ईरान ने खनन क्षेत्र में अपनी क्षमता में 37 गुना वृद्धि की है। इसी तरह रहमानी बताते हैं कि इस्लामी क्रांति के आरंभ में हमारे पास निर्यात में $500 मिलियन और गैर तेल आयात में $10 बिलियन थे, जो निर्यात से 20 गुना अधिक था। लेकिन इस्लामी क्रांति की महान सफलता के 40 साल बाद आज ईरान का गैर तेल निर्यात आयात के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। ये सब ऐसी स्थिति में है कि जब ईरान पर इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका समेत कई उसके सहयोगियों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसके बावजूद ईरान इस समय विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में ये स्वीकार किया है कि सन 2022 के अंत तक ईरान की अर्थव्यवस्था बढ़कर $1573 अरब हो जाएगी। वर्तमान समय में ईरान की अर्थव्यवस्था पोलैंड, हॉलैंड, मिस्र, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से आगे है। सन 2021 के क्रय शक्ति सूचकांक के आधार पर ईरान विश्व में आर्थिक शक्ति के हिसाब से 20वें स्थान पर पहुँच गया है।
वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर सीमेंट का उत्पादन 4,100 मिलियन टन के बराबर था। वर्ष 2018 के बाद से यही आंकड़ा बना हुआ है। अकेले चीन ने 2,200 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया, जो वर्ष 2020 में उत्पादित कुल सीमेंट का 53% है। चीन के बाद भारत ने बड़े अंतर से 340 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया है। सीमेंट उद्योग की वर्ष 2020 की विश्व रैंकिंग में तुर्की का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 16% बढ़ा और 66 मिलियन टन की सीमा तक पहुंच गया। इस वृद्धि के साथ तुर्की वर्ष 2020 में छठे स्थान पर पहुंच गया, जिसके बाद से तुर्की क्षेत्रीय बाजार को पूरी तरह अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर सीमेंट के उत्पादन में इस्लामी गणतंत्र ईरान की बातें करें तो वर्ष 2020 में ईरान में सीमेंट का उत्पादन वर्ष 2019 के मुकाबले में समान था और इसकी मात्रा 60 मिलियन टन थी और विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर था। पहलवी युग के अंत में ईरानी सीमेंट उत्पादन प्रति वर्ष 7.7 मिलियन टन था, जो 80 के दशक में 17 मिलियन टन तक पहुँच गया था। लेकिन इस उद्योग के विकास का चरम वर्ष 1980 के दशक में शुरू हुआ और वर्ष 2014 में सीमेंट का उत्पादन अपने रिकॉर्ड स्तर पर 70 मिलियन टन पर पहुंच गया।
आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की रिपोर्टों के मुताबिक ईरान में करीब 88 मिलियन टन की क्षमता वाली करीब 76 सीमेंट और क्लिंकर कंपनियां हैं। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका पत्थर, लौह अयस्क, जलोढ़, माल मिट्टी, ज्वालामुखी की राख, लावा आदि हैं। सीमेंट उद्योग के सभी कच्चे माल की आपूर्ति देश के भीतर से ही की जाती है। इस्लामी गणतंत्र ईरान को वर्ष 2012 में दुनिया में चौथा और 2015 में सीमेंट उद्योग में दुनिया में छठा स्थान दिया गया था, लेकिन फिर दुनिया में 10वें स्थान पर आ गया और वर्ष 2020 में फिर से 3 पायदान छलांग लगाते हुए दुनिया में 7वें स्थान पर पहुंच गया। हालांकि सीमेंट उत्पादन वर्ष 2020 के पहले 9 महीनों में जो 53 मिलियन और 574,000 टन था, उसमें वर्ष 2021 के पहले 9 महीनों में 9.1% की कमी के साथ 48 मिलियन और 697,000 टन के पास पहुंच गया। ये ऐसी स्थिति में है कि जब उद्योग मंत्रालय के अनुसार देश की सीमेंट उत्पादन क्षमता वर्तमान में 80 मिलियन टन है, वहीं इन सबके बीच ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि निर्माणाधीन अक्षमता रुकी हुई क्षमता का उपयोग करते हुए वर्ष 2023 के आरंभ तक सीमेंट उत्पादन प्रति वर्ष 90 मिलियन टन से अधिक होने की उम्मीद है। सीमेंट उद्योग के विकास के लिए रणनीतिक योजना के अनुसार क्षेत्र में उत्पादन क्षमता के पहले रैंक के रूप में 120 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया में तीसरा स्थान हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
ईरान में सीमेंट उत्पादन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की उत्पादन क्षमता का एक बड़ा हिस्सा उपयोग नहीं किया जाता है। घरेलू निर्माण में सुस्ती और सरकार के विकास बजट में कमी इसका एक कारण है। सीमेंट की घरेलू खपत 55 मिलियन टन प्रतिवर्ष है, जो पिछले दो वर्षों में घटी है। ऐसी स्थिति में जब ईरान के पास 80 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन की क्षमता है और यदि घरेलू खपत प्रतिवर्ष 55 मिलियन टन है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष लगभग 25 मिलियन टन सीमेंट निर्यात करने की क्षमता साफ साफ दिखाई देती है, जिस क्षमता के जरिए हमें देश में विदेशी मुद्रा को ला सकते हैं और ईरान की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में ईरान के सीमेंट निर्यात में तेजी से गिरावट आई है। इराक द्वारा ईरानी सीमेंट के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों ने ईरान को अपनी सीमेंट उत्पादन क्षमता का अधिक उपयोग करने से रोक दिया, क्योंकि इराक ईरानी सीमेंट निर्यात का मुख्य केंद्र है, जहां लगभग 50% ईरानी सीमेंट इराकी बाजारों की आपूर्ति करती है।
लेकिन घरेलू
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रमों के बारे में आपके विचारों सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। अपने सुझाव आप हमें ज़रूर भेजिए। आपके विचारों से और आपके सुझावों से कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में हमें मदद मिलती है। तो श्रोताओ, इसी के साथ ये कार्यक्रम भी यहीं पर समाप्त होता है और यहीं पर हमारी ये सभा भी समाप्त होती है। अगली मुलाकात तक हमें अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.